निकोला में रिपोर्टर के बीच सड़क पर लाश मिलने का मामला तूल पकड़ रहा था। राघवेंद्र से भी ये सब छुपा नहीं था। उसने जिस कुल्हाड़ी से रिपोर्टर को मारा था वो उसे ढूंढने के लिए तबेले में आया, लेकिन उसे वो वहां नहीं मिली। फिर उसे याद आया कि आखिरी बार वैदेही काफी देर तक तबेले में रुकी थी। बाकी का मामला समझते उसे देर नहीं लगी। वैदेही, राघवेंद्र गुस्से में जोर से चिल्लाया, वो लड़की हमारी नाक के नीचे से इतना सब कुछ कर गई और हमें खबर तक नहीं लगी। अब समझ आया कि वो हम लोगों के हाथ की छाप क्यों ले रही थी। भैया जी, हम तो बोले थे कि उसको यहीं पर निपटा देते हैं, पर आप ही नहीं माने, लल्लन ने राघवेंद्र के पास आकर कहा। पहली बार साला इमेज के चक्कर में पड़े थे और इतना बड़ा नुकसान करा बैठे। अब तक तो वो लड़की उस कुल्हाड़ी को पुलिस स्टेशन में भी जमा करा चुकी होगी। उसके पास तो हमारे हाथों की छाप तक मौजूद है, राघवेंद्र सिर पकड़कर बोला। पुलिस को आप तक आने से पहले हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। हम बोल देंगे कि हमने उस रिपोर्टर का काम तमाम किया था। ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है लल्लन, एक बात तो साफ है, वो लड़की अब तक पुलिस स्टेशन पहुंची नहीं है, वरना दो दिन नहीं बीतते इस वक्त हम जेल के पीछे होते। दादा, आप एक बार आदेश कीजिए, हम उसे उसके घर से उठा लाएंगे, फिर ऐसी हालत करेंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी, उनमें से एक आदमी बोला। हम नहीं जानते कि वो लड़की चाहती क्या है, जो गलती पिछली बार किए थे वो इस बार नहीं कर सकते हैं, हमें खुद मुंबई जाकर उससे मिलकर बात करनी होगी, राघवेंद्र ने खुद के गुस्से को काबू करके बोला। वो जानता था कि इस बार उसने जल्दबाजी में गड़बड़ की तो मामला काफी बिगड़ सकता था। गाड़ी निकालो, हमें जल्द से जल्द मुंबई पहुंचना होगा, शुभम को बोल के हमारे लिए फ्लाइट की टिकट बुक करवाएं, कहकर राघवेंद्र वहां से जाने लगा। तभी उसे कुछ याद आया और वो वापस अपने आदमियों की तरफ मुड़कर बोला, उस रिक्शा वाले का क्या हुआ जिस नंबर से फोन आया था? हमारा नाम लेकर उसकी लोकेशन और नाम निकलवाओ। जी भैया जी, हम देख लेंगे, हमेशा की तरह लल्लन ने जवाब दिया। राघवेंद्र वहां से मुंबई जाने की बात बताने के लिए अंदर आया। शाम का वक्त हो रहा था। उसने देखा कि घर के आंगन में सुमित्रा मानव को अपने हाथों से लड्डू खिला रही थी। राघवेंद्र तेजी से अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन सुमित्रा ने उसे देखा तो उसे आवाज लगाकर बोली, ए राघव, तू भी आ, यहाँ बैठ, देख मैंने आज अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए हैं। याद है ना, बचपन में दोनों भाई रेस लगाते थे कि कौन कितने ज्यादा लड्डू खा पाएगा। आज मन नहीं आई, और वैसे भी चीजें बचपन जैसी रही कहाँ है, राघवेंद्र ने बुझी आवाज में जवाब दिया। आइए ना दादा, अपने बचपन को फिर से जीते हैं, बार बार ये मौका कहाँ मिलता है। माना अब हम बड़े हो गए तो ये सब चीजें हमें सेली लगती हैं, लेकिन कई बार बेवकूफी करने का भी अलग ही मजा है, बोलते हुए मानव उठकर उसके पास आया और उसे जबरदस्ती वहां लेकर गया। तो हो जाए रेस, मानव ने आंख मारकर पूछा, आज तक तेरी कोई बात टाली है? जब टालूंगा, राघवेंद्र ने हंसकर कहा। इतनी परेशानी में होने के बावजूद वो मानव के बुलाने पर मान गया। तो तय रहा, देखते हैं 5 मिनट में सबसे ज्यादा लड्डू कौन खाता है। मानव ने अपने फोन में 5 मिनट का टाइमर लगाकर सुमित्रा को पकड़ा दिया। आई, 5 मिनट होने पर आप हम दोनों को रोक दीजिएगा। छा, कौन सी आई भला अपने बच्चों को खाना खाने से रोकती है, सुमित्रा ने मुंह बनाकर कहा। आई, अगर आप हमें रोकेंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हम में से विजेता कौन है, राघवेंद्र ने जवाब दिया। मेरे लिए तो तुम दोनों ही विजेता हो, फिर भी तुम दोनों जिद कर रहे हो तो 5 मिनट होने पर बता दूंगी, लेकिन मैं तुम दोनों को खाने से रोकूंगी नहीं, सुमित्रा ने प्यार से कहा। राघवेंद्र और मानव एक एक करके जल्दी जल्दी लड्डू खाने लगे। राघवेंद्र को जाने में देर हो रही थी, उसके बावजूद मानव का दिल रखने के लिए वो वहां पर लड्डू खा रहा था। अगर बात मेरे भाई और आई की नहीं होती तो मैं 5 मिनट की भी देर नहीं करता, वैदी ही, तुमने अपनी मासूमियत दिखाकर जो हम सबको छला है वो सब तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। तुम्हें तो मैं वो सजा दूंगी कि तुम मेरे सामने मौत के लिए गिड़गिड़ाओगी, राघवेंद्र ने लड्डू खाते हुए सोचा। उसके चेहरे के भाव गंभीर थे और आंखों में भयंकर गुस्सा था। जैसे ही 5 मिनट पूरे हुए, सुमित्रा ने उन्हें बता दिया, हर बार की तरह मेरे राघव ने ज्यादा लड्डू खाए हैं, देख ले मानव, तुम्हारे दादा इतने तेज हैं, तुम्हें भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बनना है, उसने खुश होकर कहा। नहीं आई, मानव मेरे जैसा नहीं बनेगा, राघवेंद्र ने कहा और उठकर जल्दबाजी में अंदर चला गया। विधायक बनने के बाद से ही राघवेंद्र मुंबई में रहता था। जब भी उसे मौका मिलता तो वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताने आ जाता था। अरे जा कहाँ रहा है, बताकर तो जा, सुमित्रा पीछे से चिल्लाकर बोली। आई, मैं मुंबई जा रहा हूँ, प्लीज अब कोई सवाल मत करना, वहां पहुंचकर सब कुछ बता दूंगा, राघव ने अंदर से जवाब दिया। उसके बाद आगे किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर बाद राघव एक बड़ी सी सूटकेस के साथ बाहर आया। हमेशा की तरह जाने से पहले सुमित्रा ने राघवेंद्र की आरती उतारी और उसे टीका लगाया। उसके पैर छूने के बाद राघवेंद्र वहां से जाने के लिए बाहर निकल पड़ा। वो बाहर निकला ही था कि तभी उसने देखा कि उसके घर के आगे त्यागी जी की गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी से बाहर निकल कर आए और उन्होंने राघवेंद्र को सूटकेस के साथ देखा तो कहा, लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है, कहीं मुंबई तो नहीं आ रहे थे? हम अपनी मर्जी के मालिक हैं त्यागी जी, हमारा मन करेगा वहां जाएंगे, मुंबई, गोवा, शिमला या थाईलैंड। चलो आओ, बैठकर बात करते हैं, त्यागी जी ने राघवेंद्र को अंदर आने का इशारा किया और खुद भी अंदर बढ़ने लगे। मजबूरन राघवेंद्र को भी उसके पीछे आना पड़ा। इस त्यागी को भी यहाँ पर अभी टपकना था, आज का हमारा दिन ही मनहूस है, लगता है आई को बोलकर कोई पूजा करवानी पड़ेगी, वरना हमारे मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में कई रोड़े हैं, उसने सोचा। दूसरी तरफ लल्लन अपने आदमियों के साथ उस ऑटो ड्राइवर की खोज में लग गया। जल्द ही उसे उसका नाम और पता मालूम हो चुका था। वो अपने आदमियों के साथ उसके घर पहुंचा। केशव, केशव दादा, कुटे आइस, राघवेंद्र ने एक आदमी ने दरवाजा खटखटाकर बोला। वो घर पर नहीं है, बाद में आना, अंदर से एक औरत की आवाज आई। लेकिन हम उन्हीं की खबर लेकर आए थे, दरवाजा खोलिए वहीनी, उसने एक बार फिर आवाज लगाई। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लल्लन ने बिल्कुल दबी आवाज में बोला, ये हमको अंदर नहीं आने दे रही, इसका मतलब जरूर वो अंदर ही कहीं छुपा होगा। लेकिन वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रही लल्लन भैया, फिर हम अंदर कैसे जाएंगे, दूसरे आदमी ने दबी आवाज में कहा। हम कोई पुलिस या रिश्तेदार तो है नहीं जो इनके दरवाजा खोलने पर ही अंदर जाएंगे, लल्लन ने कहा और अपनी बंदूक लोड की। उसने दरवाजे के जोर से लात मारी। दरवाजा ज्यादा मजबूत नहीं था, वो एक छटके में ही डावाडोल हो गया। लल्लन ने उस दरवाजे को दो तीन धक्के और मारे, इसी के साथ दरवाजा खुल गया। उसने अपनी बंदूक ऊपर की और आदमियों के साथ अंदर घुस गया। केशव कहाँ है, लल्लन ने सामने बैठी औरत से पूछा। वो उसे देखकर काफी डर गई। उसने अपने 4 साल के बच्चे को अपने सीने से लगा लिया। देखिए हमें नहीं पता वो कहाँ है, आप ऐसा करेंगे तो बच्चे डर जाएगा, हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, बच्चे के सामने ये सब मत कीजिए, औरत रुंधे गले में बोली। लल्लन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और अपनी पॉकेट में हाथ डालकर एक चॉकलेट निकाली। वो उसे लेकर उस बच्चे के पास गया और उसकी तरफ बढ़ाकर बोला, एको खाओगे, बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा। तुम्हारी माई कुछ नहीं कहेगी, खा लो, और हमने इसमें कोई जहर नहीं मिलाया है जो तुम अपनी माई से पूछ रहे हो, लल्लन ने जबरदस्ती चॉकलेट बच्चे के हाथ में थमा दिया।
बच्चा चॉकलेट खाने में व्यस्त हो गया। इसी बीच लल्लन ने अपने आदमियों को अंदर जाकर तलाशी देने का इशारा किया। उस औरत ने रोकने की कोशिश की लेकिन बच्चा साथ होने की वजह से वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाई। मिल गया भैया जी, अंदर से एक आदमी की आवाज आई तो सभी दौड़कर अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा केशव किसी बड़ी सी अलमारी के अंदर था। उसे ढूंढने की वजह से उसके आदमियों ने उनके घर का सारा सामान बिखेर दिया था। उस आदमी ने केशव का कॉलर पकड़ रखा था। वो उसके सामने हाथ जोड़कर छोड़ने की बात कर रहा था। हमने तो आपकी मदद ही करने की कोशिश की थी, हमने कहा था कि हमारी सवारी ने उस लाश को देख लिया है, अब इसमें हमारी क्या गलती है कि उन दोनों मियाँ बीवी ने पुलिस बुला ली, केशव गिड़गिड़ाते हुए बोला। तुम्हारी गलती ये है कि तुम छुपकर बैठ गए, किसने कहा था कि लाश के आगे अपना रिक्शा रोको और बाद में उन दोनों को वहीं छोड़कर भाग जाओ। अरे पुलिस आने जितना तक तो टाइम था ना, एक बार हमें फोन करके बोल देते तो पुलिस से पहले पहुंच जाते और उन दोनों को भी ठिकाने लगा देते। तुम्हारी वजह से आज मामला हमारे हाथ से निकल गया और हमारे भैया जी टेंशन में है, लल्लन गुस्से में बोला। हम अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगते हैं, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बीवी बच्चे का क्या होगा। ओ की फिक्र तुम मत करो, भैया जी बहुत महान है, जब वो हम जैसे अनाथ को पाल सकते हैं तो तुम्हारे बीवी बच्चे को भी संभाल ही लेंगे, लल्लन ने जवाब दिया। उसने केशव का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर लेकर आया। उसकी पत्नी ने अपने बच्चे की आंखों पर अपने हाथ लगा रखे थे ताकि वो ये सब ना देख सके। वो रोती हुई उनके सामने भीख मांगने लगी। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिए, उनसे जो गलती हो गई है उसके लिए उन्हें माफ कर दीजिए। उसके रोने पर लल्लन को दया आ गई और उसकी आंखों के सामने अपने बचपन के दृश्य आने लगे, जब कुछ गुंडे उसके बाप को जबरदस्ती उठाकर ले गए और कुछ देर बाद उसके बाप की लाश आई थी। उसकी माँ भी उन गुंडों के सामने उसी तरह गिड़गिड़ा रही थी, गुंडों ने उसकी माँ को भी मार डाला था। ये सब सोचकर लल्लन की आंखें नम हो गईं। ठीक है, हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा, लेकिन अभी तो ईको हमारे साथ चलना होगा, लल्लन ने कहा और बच्चे के पास आकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फिराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपको लंबी उम्र दे, उस औरत ने बोला। लल्लन ने उसके बाद का कोई जवाब नहीं दिया। राघवेंद्र के आदमियों ने अब केशव का कॉलर छोड़ दिया और उसे सही तरीके से अपने साथ राघवेंद्र के घर लेकर जाने लगे। वो इस बात से अनजान थे कि त्यागी जी राघवेंद्र से मिलने उनके घर पर आए हुए हैं। बिना राघवेंद्र को सूचित किए लल्लन अपने आदमियों सहित ऑटो ड्राइवर को लेकर घर पहुंच रहा था। पाठ पढ़कर समीक्षा जरूर करिएगा, आजकल आप लोगों का रिस्पॉन्स काफी स्लो आ रहा है।